निपत्तभुवि दण्डवतो दुभटारति अस्य प्रसादमबुधस्य जनस्य कृत्वा गन्धर्विके तव गणे गणनम् अङ्गश्यामलिं छटाभिरभितो मन्दे कृतेन्दे वरं जड्डञ्जागुडरोचि साङ्विदधतङ्पट्टम्बरस्य श्रिया वृन्दारण्यनिवासिनं हृदि लसद्दामाभिरामोदरं राधास्कन्दनिवेशितोज्ज्वलभुजं ध्यायेम् दाम भक्त्या विहीनापराधलक्ष्यै क्षिप्त्वाश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयीं त्वां शरणं प्रपन्ना वन्दे नमस्ते चरणाय गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्य द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनि तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चर। राग भट्ट चंद्रिका जीव गोस्वामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के स्वकीय परकिया के संबंध में भक्ति विनोद ठाकुर का विचार। जी गोस्वामी हमारे तत्वाचार्य और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी रसाचार्य, इन्होंने अपनी दृष्टिभंगियों से एक ही तत्व का, तत्व की दृष्टि से और रस की दृष्टि से विवेचन प्रस्तुत किया है, इसलिए दोनों में भेद नहीं है। हमारे रूप सनातन ने कहा कि गोलोक वृंदावन में जो लीला नित्य निरंतर होती है, इस जगत में प्रकटित नहीं होती, उसको अप्रकट लीला कहते हैं। वही लीला ब्रह्मा जी के एक दिन में, एक समय में अवतरित इस जगत में होती है, तो उसे प्रकट लीला कहते हैं। दोनों में कोई भी अंतर नहीं है, कुछ थोड़ा सा अंतर यह है, जैसे कि एक व्यक्ति इंग्लैंड में रहता है या हिम प्रदेश में रहता है, और वो यदि गर्म प्रदेश में आ जाए तो क्या अंतर होगा? कपड़े का अंतर हो जाएगा। हिम प्रदेश में रहने पर गर्म कपड़े से ढका रहेगा, और यहाँ आने पर वो कपड़े सब छोड़ करके साधारण रूप में वो पहनेगा, यही अंतर होगा। तो नित्य अप्रकट लीला में जो लीलाएं हैं वो शुद्ध रूप से यहाँ पर हैं, किंतु माया के पर्दे वाले उसको देख नहीं पाते, उसको अपने अनुसार में, अपने अधिकार के रूप में, कुछ माइक चीज के रूप में दर्शन करते, भजन करते करते, नाम और हरि कथा का श्रवण करके, संतों के की प्रेममयी सेवा के द्वारा जब संपूर्ण रूप में चित भाव उनका उदित होगा, अथवा जितना उदित होगा उतना ही विशुद्ध रूप में वे देखेंगे, और जितना नहीं है उतना नहीं देखेंगे। बस दोनों में रूप सनातन के विचार से प्रकट लीला अप्रकट लीला में कोई भी भेद नहीं है, दोनों अभिन्न है, किंतु एक प्रपंचातीत प्रकाश में और एक प्रपंच के अधीन प्रकाशित है, प्रपंच में स्थित है। तो केवल वहाँ प्रपंच के अतीत एक प्रकाश है, दूसरा प्रपंच में स्थित प्रकाश है, केवल यही भेद है। प्रपंचातीत प्रकाश में दृष्टि और दृष्टिगत संपूर्ण विशुद्धता है, वहाँ पर दृष्टि जिसको देखा जा रहा है, जिस दृश्य को, भगवान को, भगवान के लीलाओं को, वहाँ पर वो शुद्ध है। और दृष्टि, दृष्टिगत माने क्या है, जो देख रहा है उसकी भी संपूर्ण शुद्धता है, दोनों शुद्ध है, जो देखने वाला और जो देखा जा रहा है, दोनों वहाँ पर लीलाएँ विशुद्ध रूप में हैं। बड़े सौभाग्य से कृष्ण की कृपा होने पर वह लीला इस प्रपंच में उदित होती है। अब वो संपूर्ण प्रपंच संबंध से संपूर्ण रूप से अलग होती है और यहां पर तो जो लोग बड़े सौभाग्य से कृष्ण की कृपा यदि किसी पर हुई या भगवत भक्तों की कृपा हुई, जो लोग प्रपंच को और प्रपंच के संबंधों को संपूर्ण रूप से त्याग कर छोड़कर उसे शुद्ध हो करके चित जगत में प्रवेश करते हैं, यदि उनमें साधनकालीन साधन के समय में रस वैचित्र की आस्वादन की यदि सिद्धि रहे, तभी गोलोकी संपूर्ण विशुद्ध लीला का वो दर्शन और आस्वादन कर सकते। ये समझ में नहीं आएगा अब इसको मैं क्या कहूँ, ये समझना बड़ा भारी थोड़ा सा कठिन है। जो कुछ साधन करते हैं वो लोग तो समझेंगे, आज जो साधन नहीं करते हैं वो लोग इसको समझ नहीं सके। तब समझो, हम और थोड़ा सा विस्तार करके कह देते हैं। भगवान की कृपा से संतों के समागम होने पर उनके विचारों को सुन करके हम शुद्ध रूप में गुरु पदाश्रय करते हैं। शुद्ध रूप में गुरु पदाश्रय करना भी बड़े सौभाग्य की बात है। धर्म अर्थ काम मोक्ष की वांछा के लिए, जागतिक प्रतिष्ठा और रुपया पैसा वस्तु के लिए ने? गुरु के यहाँ जाना वो एक बात है, वो शुद्ध नहीं है। केवल परमार्थ की लालसा से कृष्ण के ब्रज प्रेम की तरफ में लक्ष्य रख करके उसकी प्राप्ति के लिए यदि हम गुरु करते हैं, तब तो ये शुद्ध गुरु करना होगा। ये भी भगवान या भगवान के भक्तों की कृपा से ही होगा, ऐसे नहीं होगा। जब ऐसे भक्तों का संग हुआ, गुरु कर्ण हुआ, तो उनसे इन सब तत्वों को, साधन किसको कहते हैं, साध्य किसको कहते हैं, कैसे साधन करना चाहिए, उसको समझ बूझ करके उनकी कृपा से तो वो साधन में श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवन इत्यादि में लगते हैं। लगते लगते धीरे धीरे धीरे, जैसे कपड़े में साबुन लगाने से मैला साफ होता है, ऐसे जीवों के अंदर में जो अनर्थ हैं, जागतिक जो चिंताएं हैं, जागतिक मलिनता है, मैं ये शरीर हूँ, मैं शरीर से संबंधित वस्तुओं को अपना कहता हूँ, और जागतिक लाभ पूजा प्रतिष्ठा कनक कांचन कामिनी के लिए हम जो कुछ करते हैं, तब तो अशुद्ध हो गया ने? ये सब अनर्थ हैं। ठीक रूप से भजन करते करते ये अनर्थ दूर हो जाएंगे, तब वही श्रद्धा निष्ठा होगी, फिर उसी से रुचि भगवान में आएगी, फिर भगवान के प्रति आसक्ति आएगी। आसक्ति होने के बाद में भगवान अनुग्रह करके अपनी सत जो स्वरूप शक्ति है उसकी लादनी और संबित की सा वृत्ति को जीव के हृदय में प्रवेश करा देते हैं। इसी का नाम शुद्ध सत्व होना है। जब यह हो जाता है तो अपने आप जल जलधारावत अविच्छिन्न गति से चित्त की वृत्तियां सब भगवान के चरणों में लगने लगती हैं। कुछ दिनों के बाद में ऐसी सिद्धि होने के बाद में प्रेम होता है। अब साधन काल में जैसा वो प्रेम करेगा, जैसे भक्तों का संग हो रहा है या उसके हृदय में जैसे प्रेम की पोटेंसी है, उनके अनुसार में साधुओं के संग होने से यदि वैकुंठ को पार करके ब्रज की भावना है, और वैसा गोपियों जैसा, गोपों जैसा, सखामों जैसा, यशोदा मैया जैसा साधना, तो वो गोलोक वृंदावन में पहुंच करके कृष्ण को भी देखेगा, उनकी लीला को भी देखेगा, तो वो उसकी दृष्टि शुद्ध होगी और कृष्ण की लीलाओं को भी शुद्ध रूप में देखेगा। जिसने साधन अवस्था में नारायण और लक्ष्मी की उपासना की या सीताराम की उपासना की स्वकीय भाव से, अथवा द्वारकाधीश का भजन किया, द्वारकाधीश और कृष्ण में कोई अंतर ही नहीं समझा, वो लोग साथ यदि सिद्ध भी हो गए तो वो द्वारका तक में आवर्तेंगे। उनमें कुछ लोग जाएंगे बैकुंठ, कुछ लोग तो मुक्ति में जाएंगे, कुछ लोग बैकुंठ में, कोई रामलोक में जाकर के उनकी हनुमान के अधीन रह करके सेवा करेगा, और कुछ लोग द्वारका में जाकर के शांत दास्य सख्य, वो भी सख्य माने आधा और वात्सल्य का आधा में तक पहुंच करके वहीं रह जाए। और जिन्होंने हमारे रूप गोस्वामी के दिखलाए हुए पद्धति से भजन किया वो लोग ब्रज में जा करके पहुंचे, उनकी सिद्धि वहां। विशेष करके जिन्होंने गोपियों को लक्ष्य करके गोपियों जैसी साधना और कृष्ण के चरणों में गोपियों जैसा प्रेम किया, उनकी दृष्टि और भी शुद्ध निर्मल होगी और कृष्ण की लीलाओं को वो संपूर्ण में विशुद्ध रूप में दर्शन करेंगे। उस समय में कृष्ण के लीला और परिकर विशुद्ध जैसा लीला कर रहे हैं ठीक उसी रूप में ये देखेगा भी और उसको आस्वादन करेगा। जो लोग साधन अवस्था में ऐसा नहीं किया वो लोग सिद्ध अवस्था में ऐसा नहीं दे सकते। जिन्होंने सब देवताओं की उपासना की वो इसी लोक में रह जाएंगे, फिर वो धनी गरीब अमीर इस रूप में आएंगे। जो लोग इससे बढ़े वो मुक्ति तक जाएंगे, उससे यदि आगे बढ़े स्वकीय भाव से तो द्वारका तक पहुंचे, इससे आगे नहीं पहुंचे। इसलिए साधन के समय में जैसे उन्नत कोई व्यक्ति होगा, जैसा उच्च साधन करेगा उसकी दृष्टि भी निर्मल होगी, तब कृष्ण की लीलाओं को शुद्ध रूप में दर्शन कर सकेगा। अच्छा, उस समय वे गोलोक की संपूर्ण विशुद्ध लीला का दर्शन और आस्वादन कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने बृहद भगवतामृत सुना, उसमें हम लोगों ने देखा वो कौन, गोप कुमार। गोप कुमार ने चारों तरफ में भ्रमण करके भी अंत में किसी तरह से वृंदावन में पहुंचा, द्वारका से भी पहुंच करके उतर करके भी यहाँ आया, बैकुंठ से भी उतर करके एक बार आया और भी बीच बीच में आया। यहाँ आने के बाद में उसको शुद्ध गुरु मिले और उनके गुरु के संपर्क में आकर के जैसा उनका गुरु थे सख्य भाव का, वो यहाँ पर उसी तरह से साधन किया। साधन करने के बाद में देखा चला जा रहा है ऊपर, कहाँ चला जा रहा है, देखते देखते अरे मैं तो ब्रज में आ गया। कृष्ण गोचारण करने के लिए गए, वहाँ पर गोचारण देखने लगा और उनके दल में सम्मिलित, कृष्ण उसको पकड़ करके और मूर्छित होकर के दोनों गुरु, तभी उसके हृदय में वो भाव संचरित नहीं हुआ, तब उसके सिर पर गुरुजी ने तब वो वहां गया। साधन करने से भी नहीं हुआ, ज्ञान मात्र हुआ, विज्ञान नहीं हुआ, तब गुरुजी ने हृदय से लगा लिया, उसके ऊपर में सिर हाथ रख दिया और वैसा हो जाए कह दिया बस। ये ऐसे ही साधन भजन होते, इसमें एक जन्म ही नहीं लाखों जन्म लग सकते हैं, लाखों जन्म लग जाएंगे। यदि ये संभव हो गया तो समझो जी भगवान की बड़ी कृपा है, एक जन्म में तो होने की बात ही नहीं। अधिक से अधिक इस जन्म में संस्कार हो सकते हैं और संस्कार के बाद में जो होना है वो तो होगा पीछे। ऐसे पात्र सुदुर्लभ होते हैं, बहुत सुदुर्लभ, साधक ही नहीं सुलभ है, ऐसे साधक ही नहीं मिले। एक लड़का बीमार था, बहुत बीमार, अब मरा, अस्पताल में अब प्राण जाने वाले हैं और भैया एकदम पागल हो गई उसको देखकर। मैं गया देखने के, देखा जैसे ये भी पागल है, बच्चा तो मरा ही। हमने कहा ये छटपट कर रही हैं, यदि भगवान आए और कहें तुमसे ये मैं बच्चे को ले जा रहा हूं तुम यहां रहो, इसके बदले में तुम यदि प्रेमा भक्ति चाहती हो तो मैं तुम्हें दे दूंगा, किंतु लड़के को हमको ले जाना है, तो आप करेंगी क्या, क्या मांगेंगी? प्रेमा भक्ति लेना चाहेंगी या इस लड़के को? ना कि हम लड़के को चाहेंगे। देखो ना ऐसी माया सभी का, करी करी दो चार एक आदमियों को छोड़ करके बाकी सभी का ऐसी ना? हमारे समझ में नहीं आएगा उस समय, अभी नहीं समझ में आएगा ये कृष्ण प्रेम कितनी दुर्लभ वस्तु। लड़का तो मरेगा नहीं, उसका अवस्थांतर हो जाएगा, यहां से वहां पर पहुंच जाएगा, मरा तो नहीं। और जो कृष्ण प्रेम हाथ में आया था वो भी चला गया, और लड़का तो आज न कल फिर जाएगा, किंतु आदमी नहीं समझ। तो साधन समय ये सब कठिनाइयां, हम अपने भोगों में इतने लग जाते हैं जो कृष्ण प्रेम की गरिमा को समझ नहीं पाते, उपलब्धि नहीं कर पाते। तो ऐसे पात्र दुर्लभ होते हैं जगत में। दूसरी ओर जो लोग साधक प्रपंच में रह करके भी भक्ति की सिद्धि लाभ किया, अर्थात स्वरूप सिद्धि, उनकी वस्तु सिद्धि हो गई है, है? और इनकी अभी स्वरूप सिद्धि हुई है, जगत में है, सिद्धि लाभ करके कृष्ण की कृपा से चिद रस की अनुभूति प्राप्त कर रहे हैं, अर्थात विशुद्ध सत्व स्वरूप शक्ति की वो वृत्ति आई है, यहाँ तक हुआ है, स्वरूप सिद्धि हो गई है, किंतु अभी वस्तु सिद्धि नहीं हुई है। वे लोग भौम गोकुल की जो लीलाएं हैं, उन लीलाओं को, गोकुल की लीला में गोलोक की लीला को दर्शन करते हैं। माने क्या, यहाँ जो लीला चल रही है उसी को देखते हैं कि यह गोलोक में भी चल रही है, दोनों की अभिन्नता को ग्रहण कर लेंगे, नहीं? करेंगे। और वहां वाले क्या हैं, वो विशुद्ध रूप में वहां पर अनुभव कर रहे हैं। कौन? जो यहाँ से चले गए हैं वहां, वो वहां पर पहुंच करके दोनों लीलाओं की, वहां के दो लीला ही नहीं है, एक ही लीला। और यहां वाले गोकुल की लीला देख रहे हैं, और इसी को गोकुल की लीला विशुद्ध रूप में देखते हैं। इन दोनों प्रकार के अधिकारियों में कुछ तारतम्य है, फिर भी तारतम्य है। जो वहां पर पहुंच गए हैं वस्तु सिद्धि, और यहाँ वाले जिनको स्वरूप सिद्धि है, यहाँ वाले ही गोकुल की लीला में गोलोक दर्शन करते हैं, उन अधिकारियों में कुछ तारतम्य यही है, वस्तु सिद्धि नहीं होने तक गोलोक लीला के दर्शन में कुछ कुछ माइक प्रतिबंध रहते हैं। इन्हीं लोगों की दृष्टि में कुछ माइक प्रतिबंध होता है, वहां नहीं होता, किंतु इन लोगों में होता है।
स्वरूप सिद्ध होने के बाद
भी, हाँ,
इस जगत में जब तक है,
जब तक है तब तक रहेगा। जैसे उस ठंड प्रदेश में अधिक ठंड है ना, तो कपड़ा अधिक पहने हैं, गर्म के कपड़े, और यहाँ आने पर गर्मी लगती है तो खोल देते हैं, खाली शरीर है, यहाँ वहाँ पर खाली शरीर निर्मल, और यहाँ माया का प्रलेप है, इसलिए माइक दृष्टि से देखने के लिए बाध्य होते हैं। वे लोग क्या करेंगे, कृष्ण की जन्म लीला कौन इस जगत में है, इस जगत में रहने वाले भक्त जो हैं स्वरूप सिद्ध, वो उनकी बाल्य लीला को देखेंगे, फिर पौगंड लीला को देखेंगे, फिर किशोर लीला को देखेंगे, ये तीनों को बाध्य हैं देखने के। और वहां पर जो जिस भाव में है उसी को, विशेष करके सभी में वो नित्य किशोर लीला कृष्ण दिखे, ये उसमें दोनों में भेद है। दूसरी तरफ स्वरूप सिद्धि के तारतम्य से स्वरूप का दर्शन, दूसरी तरफ में वहां तो सिद्धि हो गई है, और यहाँ जिसको स्वरूप सिद्धि का जो तारतम्य है जितना है तक हुआ है उतना ही देखेगा। कोई क्लास मैट्रिक तक पढ़ा तो अंग्रेजी उतना ही अधिक बोल पाएगा, जो बीए है थोड़ा अंग्रेजी बोल सकता है या भाषा बोल सकता है, जो एमए वाले हैं वो कुछ और बोल सकते हैं, जो एमए पीएचडी हैं डीलिट हैं वो और भी धड़ाधड़ बोल रहे हैं, और जो लोग सब समय अंग्रेजों के निकट रहते हैं वो कैसे बोलेंगे मातृभाषा जैसा। तो इसमें तारतम्य है, अपनी शिक्षा के अनुरूप में चीजें को समझने का तारतम्य और देखने का तारतम्य होता है। इस स्वरूप दर्शन के तारतम्य के अनुसार भक्तों के गोलोक दर्शन का तारतम्य भी अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा। जिसका जैसा स्वरूप स्वरूप सिद्धि है उसी के अनुरूप में वो उसी के तारतम्य से इस जगत में जो कृष्ण की प्रकट लीला चल रही है उसमें देखने में भी तारतम्य होगा। रूप गोस्वामी एक तरह से देखेंगे, जी गोस्वामी एक तरह से देखेंगे, सनातन गोस्वामी एक रूप में देखेंगे, हमारे बलदेव विद्याभूषण एक रूप में देखेंगे, विश्वनाथ चक्रवर्ती एक रूप में देखेंगे, भक्ति विनोद ठाकुर जी कुछ कुछ जरूर इस जगत में तारतम्य हो। उस जगत में पहुंचने पर वहां पर प्रेम का तारतम्य है और यहाँ पर साधन के अनुसार में सिद्धि का तारतम्य है। इस रूप में लोग देखने के लिए बात करें
दृष्टि का तारतम्य इस जगत में उस प्रेम का
तारतम्य। नितांत जो मायाबद्ध हैं, अत्यंत जो मायाबद्ध जैसे हम लोग हैं, भक्ति चक्षु उसका नहीं रहता, आंख भक्ति की आंख जो है वो नहीं रहती। इस समय जड़ीय विचार के अनुसार में वो जड़ीय विचार करने के लिए बाध्य है। नितांत मायाबद्ध व्यक्ति चक्षु भक्ति चक्षु से रहित होता है। उसमें कोई कोई केवल माया की विचित्रता में आबद्ध होते हैं। आजकल जो राजनीति और देश की स्थिति चल रही है, सब जगहों में करीब करीब ब्राह्मण ब्राह्मणत्व का विचार और भक्ति परमार्थ इस इत्यादि का विरुद्ध सब लोग विचार कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते नहीं है, इसमें उनकी आंख ही नहीं है। वो ये समझ रहे हैं कि प्राचीन काल में या और अभी तक में ब्राह्मण लोग अपने को सबसे श्रेष्ठ मानते थे और दूसरों को पद दलित करते थे, दूसरों को अपना गुलाम बनाते थे, उनको शूद्र बनाते थे। ये नहीं जानते कि हमारे मातंग ऋषि जी क्या थे, शूद्र जाति में, व्यास देव जी किस जाति में, शूद्र में, नारद जी किस जाति में, शूद्र में, शबरी किस जाति में, इन लोगों को हमारे अबर प्रहलाद जी असुर कुल में, शूद्रों से भी नीचे, हनुमान जी पशु कुल में, अच्छा, और वाल्मीकि जी तो ब्राह्मण माने पतित थे, विभीषण जी असुर कुल में, हमारे विश्वामित्र जी क्षत्रिय थे, इनको ब्रह्मवादी कहा ना, ब्रह्म महर्षि कहा, ब्रह्मर्षि उनको बतलाया। इस तरह से इन्होंने कहा जे शूद्रों को सेवक ब्राह्मणों का सेवक होना चाहिए। किस लिए कहा, इसका तात्पर्य लोग नहीं समझते, इसलिए कि डायरेक्ट ब्राह्मणों का ये संग पाकर के ये उन्नत हो जाएंगे, इसलिए किया था। और जातियों से भी अधिक महत्ता इनकी थी, सेवा का सुयोग ना, ब्राह्मणों का संपर्क। ब्राह्मण कौन है बतलाया, सदाचारी हो, सहिष्णु हो, धन का परिग्रह करने वाला हो, माने धन ग्रहण करने वाला नहीं हो। कोई भी ब्राह्मण को उस समय का देखिए, कोई भी धनी ब्राह्मण नहीं हो, सब कुछ जो कुछ मिलता है। इस तरह से उनकी नीति बड़ी ऊंची थी, किंतु समझने वाले नहीं है, क्योंकि आंख नहीं है, इसलिए समाज पतन की तरफ ले जाए। ब्राह्मण में भी कुछ ऐसे हो गए जो जाति के ब्राह्मण, किंतु विचारों के ब्राह्मण नहीं रहे, भक्ति उनमें नहीं, उसको उस पर वो जमे रहे, जने ही हम ब्राह्मण हैं, क्या जनेऊ से या अपनी वंश परंपरा से। हमारे शास्त्रकारों ने रावण को ब्राह्मण से खारिज कर दिया, जाओ तुम शूद्र से भी अधम राक्षस है ना, इतने उदार थे वो समय ये लोग। उनको यदि भारतवर्ष उस समय विश्व का सिरमौर था सब विषयों में, इन ब्राह्मणों के द्वारा ही। दूसरे दूसरे जाति के लोग ब्राह्मण कब हुए, ब्राह्मण सभी हुए, कब? विचारों के द्वारा। आजकल और उस काल की नीति ये है, उस समय शूद्रों को भी और जातियों को भी ऊपर उठा करके ब्रह्मवादी बनाया जाता था, और आजकल ब्राह्मणों को, ब्रह्मवादियों को, विचारशील व्यक्तियों को नीचे उतार करके सबको बराबर किया जाता है। आ रहा है समझ में? नीचे को ऊपर मत उठाओ, ऊपर वालों को घसीट करके, जो जिनका सदाचार है, समानता है, उदार है, गुणी है, उनको उतारो और बराबर करो। और पहले क्या था? नीचे वालों को
उन्नत करो।
ये दोनों में जमान अश्विन का ये चीज दिमाग में नहीं आ रही है। इन लोगों को बतलाने वाला भी इन सब चीजों को कोई नहीं है, समझ नहीं रहे। इसी तरह से भक्ति राज्य में भी, भक्ति के लिए भी आंख चाहिए, उनमें आंख नहीं है, आंख नहीं है। इसलिए जो अत्यंत मूर्ख लोग हैं, जो इस संसार को ही परम सत्य मान करके और इसमें आ सकते हैं, वो भगवान को भला क्या देख सकते हैं और समझ सकते हैं? इसलिए वो कह देते हैं कि भगवान नाम की कोई चीज नहीं है, और जो भगवान के भजन करते हैं वो मूर्ख हैं, वो कुछ नहीं जानते, इनको बाइकाट करो। अभी तो बाइकाट धीरे धीरे हो रहा है, कुछ दिन आएंगे, हम लोग उस समय देखने के लिए नहीं रहेंगे, जिस समय ऐसा नास्तिकपन जब देश में हो जाएगा, जो सब लोग मरेंगे और मारेंगे परस्पर, क्योंकि जड़ विद्या के ऊपर जाएगी, उसी आज दर्शन रह जाएगा। उस समय में अर्थ प्रतिष्ठा यही सब चीज रह जाएगी, परमार्थी कोई विचार नहीं रहेगा, भगवान का विचार भी नहीं रहेगा। इसलिए इसी समय में भगवान का भजन करके चले जाओ, फिर से इस जगत में नहीं आना पड़े। तो जो भगवत भयमुख हैं, कुछ लोग निर्विशेष का आश्रय लेकर के ज्ञान का, अर्थात भगवान निराकार है, निर्विशेष है, निरंजन है, निर्गुण है, उनको कोई गुण नहीं है। हरिद्वार और काशी वाले जितने पंडित और महात्मा लोग हैं वो इसी विचार, भगवान का कोई रूप नहीं है, ये भगवान माया का आश्रय करके तब यहाँ पर कृष्ण हुए, शुद्ध वो भगवान नहीं है, शुद्ध ब्रह्म नहीं है, अशुद्ध ब्रह्म है, ये व्यवहारिक ब्रह्म है ऐसा मान लिया, तो उस भगवान में शुद्ध प्रेम नहीं है, इसलिए वो लोग उस चीज को नहीं पाए। ये भी अशुद्ध दृष्टि वाले हैं, ये लोग चरम विनाश के पथ पर पहुंचते हैं। वे लोग भगवान की प्रकट लीला को देख करके भी कंस, जरासंध, रावण इत्यादि की भांति जड़ी व्यवहार मात्र केवल देखते हैं, भगवान के लीला के रूप में वो लोग नहीं देख पाते। इसलिए अधिकारी भेद से गोलोक दर्शन की गति ही ऐसी है। अत्यंत बहिर्मुख व्यक्ति कृष्ण को एक दूसरे रूप में देखेगा, जैसे रंगमंच पर जहां हम बैठे हैं, इसी कंस के रंगमंच पर जब कृष्ण आसीन हुए, जबकि मल्लों से भीड़ रहे थे, उसमें स्त्रियों ने साक्षात कामदेव के रूप में देखा, देवकी और मैयाओं ने देखा बेटे के रूप में, नंद महाराज ने बेटे के रूप में देखा, और उनके जो सखा लोग आए हैं सखा के रूप में देख रहे। अरे ये कैसे, ये महा असुर से ये कैसे लड़ सकेगा, ये हमारा सखा। और जो दैत्य दानव थे वो उन्होंने क्या देखा, साक्षात काल के समान देखा, तत्व तत्वविद या जो योगी थे उन लोगों ने क्या देखा, तत्व परम तत्व के रूप में देखा, विराट रूप में देखा, और पहलवानों ने वज्र के समान देखा, और जदुवंशी ने उनको क्या देखा, परदेवता आराध्य देवता के रूप में। इस तरह से 10 प्रकार के लोगों ने उनको 12 रूप से देखा, उसी एक ही कृष्ण को इस तरह से एक ही भगवान को देखने में दर्श, ये तो बतलाया। किंतु जो बैरमुख हैं उनकी कितनी धारणाएं होंगी इसका कोई आदि अंत नहीं, वो कितने प्रकार से देखें, कोई कहेगा ये लंपट हैं, कोई कहेगा ये सच्चरित्र हैं, कोई कहते हैं अज्ञानी हैं, कोई कहते हैं महाभारत के कृष्ण जो है वो आदर्श हैं तरह तरह से। इसमें सूक्ष्म विचार यह है, ये अपना कंक्लूजन राय देने के पहले ये सब विचार कर रहे हैं, तब राय अंत में देंगे। एक दो लाइन में ही राय रहेगी और पहले विचार कर लेंगे। PWD1, PWD2 ये सब का क्या कहा, उसमें क्या सार है, जिसमें कि क्या सार नहीं है, ये सब बतला करके तब। इसमें सूक्ष्म विचार यह है कि जैसे गोलोक मायातीत संपूर्ण शुद्ध तत्व है, गोलोक वहां माया का प्रकाश नहीं है, बैकुंठ से ही शुद्ध भूमिका आती है, वहां पर तो एकदम माया से अतीत है, इस जगत में माया से भरा हुआ है, जो कुछ हम देखते हैं सब मालिक देखते हैं। उसी प्रकार के भौम गोकुल में भी, अब भौम गोकुल में भी शुद्ध और सर्वथा वो लीला तो नित्य है और मन शून्य है, जोग माया रूप चित शक्ति के द्वारा जड़ जगत में प्रकटित है। कैसे प्रकट हो रही है? योग माया। कैसे प्रकट किया? भगवान की इच्छा से। क्यों? जगत के जीवों के कल्याण के लिए। वो लीला आती है तो उस समय के लोग देखते हैं, फिर उसको लिपिबद्ध करते हैं और दूसरों को सुनाते हैं, सुनते हैं, स्मरण करते हैं, इसलिए उनका भी कल्याण, इसीलिए लीला प्रकट होती। प्रकट और अप्रकट विषय में तनिक भी माइक दोष हेयता असंपूर्णता नहीं है, पूर्णता सब में है, असम में निर्मलता है, कोई दोष नहीं है। केवल यहाँ पर देखने वाले जीवों के अधिकार के अनुसार कुछ कुछ भेद है। जो लोग शुद्ध निर्मल बुद्धि के हैं वो निर्मल देखें, जिनकी बुद्धि निर्मल नहीं है वो निर्मल नहीं देख सके। जितना ही निर्मल उनकी बुद्धि या आत्मा है उतना ही वो अधिक रूप में निर्मल के रूप में देख सके। उनको तो छोड़ दो, एक वैष्णव है, एक वैष्णव को भी सभी लोग एक समान नहीं देखेंगे, नहीं देख सकते कोई, उनमें तारतम्य देखेंगे। एक ही वैष्णव में एक आदमी जागतिक कुछ दोष देखेगा, कृष्ण में दोष देखा ना बहुत, शिशुपाल ने 100 दोष निकाल दिए, और उसी में जिस दोष को वो दोष कहता है उसी को सहदेव इत्यादि ने गुण कहा, उसी को गुण बतलाया। कृष्ण का गोपियों के साथ में जो चोरी की, जो रास किया, इसके लिए उसने उनकी निंदा की और इन लोगों ने कहा कि यही लीला का वैशिष्ट्य है, उसी को उन्नत बतलाया। कोई किसी रूप में, कोई किसी रूप में देखेंगे। दोष मल हेयता उपाधि माया अविद्या शुद्धता फल्गु तत्व तुच्छत्व स्थूलत्व, देखने वाले जीव जड़ के भावित चक्षु बुद्धि और अहंकार में है, भगवान में नहीं है। किसी साधु को हम देख रहे हैं ना, साधु क्या कर रहा है, ये हमको बड़े लोग तंग करते हैं। क्या तंग करते? महाराज हमको एक लड़का दीजिए, महाराज हमारी ये बिजनेस कम हो गई है, आप कुछ इसको ठीक करा, हमारा लड़का बीमार है, आप कुछ एक ऐसा कर दीजिए जो ठीक हो जाए। आप थोड़ा सा पहले कुछ पानी दिया था जिसके पानी पीने से वो ठीक हो गया, आप फिर से दे दीजिए, आप मंत्र पढ़ करके कुछ कर दीजिए, कोई मंत्र दे दीजिए ठीक हो जाए। कहने के लिए वे बाध्य हैं, वहीं तक उनकी साधु की बुद्धि है, ये उसको साथ। यदि ज्ञात अज्ञात रूप में किसी कारण से उन्होंने कुछ दिया और बच्चा ठीक हो गया तो कहें ये पक्के नंबर के शुद्ध साधु, सिद्ध साधु, किंतु शुद्ध भक्त लोग उसको नहीं मानेंगे साधु, किसको साधु मानेंगे? वो किसको मानेंगे? जो कि नाम संकीर्तन में अधिक रुचि रखता है, भगवान के और भगवान के भक्तों में अधिक प्रेम है, उसको मानेंगे ऊंचा। ये लोग कोई विचित्र चीज नहीं दे, हनुमान जी थे ना, हनुमान जी जड़ी बूटी नहीं लाते, और वैसे ही उनको मंत्र से उठा देते तो क्या बात है, उठ नहीं जाते, लक्ष्मण मरे हुए थे थोड़े। किंतु देखो लौकिक नियमों का पालन करता है, जड़ी बूटी लाए और जैसा एक मनुष्य करता है ठीक वैसे कोई बीच झट कोई चमत्कार नहीं दिखलाए, कोई भी चमत्कार नहीं, जरूरत नहीं उसमें, सब राम के बल नाम के बल पर सब करते चले। वैसे भक्त यदि है शुद्ध, जादू टोना मंत्र शक्ति और विचित्रता और चमत्कारिता वो नहीं दिखलाता, वो क्या करता है शुद्ध रूप में किसी जीव को भगवान के चरणों में लगा देता है, बस इतना ही उसका काम, भगवान के प्रति उसका अत्यधिक प्रेम होता है। यही देखें नाम में हरि कथा में उसकी कितनी रुचि है और जीवों का कितना कल्याण कर सकता है, ये देखते हैं। और साधारण कहेंगे यदि महाराज में ऐसी कोई शक्ति जो मरा हुआ जीव भी उठ करके खड़ा हो जाए तब तो ये चमत्कार है, ऐसे चमत्कार का देख, चमत्कारिता में मत जाओ। साधु के यहाँ ये सब मत देखो, वो तो अपने कर्म के फल से अच्छा बुरा होगा, इसमें साधुत्व नहीं है। साधुत्व किसमें है, भगवान के चरणों में अनुराग ले। इसलिए देखने वाले जीव में इस जगत, उस जगत में तो कोई भेद नहीं, किंतु इस जगत में तारतम्य है देखने वालों के आंखों में, बुद्धि में, मन में, यही में मैल या निर्मलता से भगवान की लीलाओं का दर्शन करने का तारतम्य है। ये सब दृश्य वस्तु निष्ठ नहीं है, वो क्या है जीवों के हृदय में जो मैल है उसके अनुसार में ये हो रहा है, वो देख रहा है। और दृश्य वस्तु में ये सब दोष नहीं है एकदम, साधु में वो दोष नहीं है। साधु ने कहा, किसी ने कहा महाराज जी आपका नाम क्या है, उन्होंने कहा जी कृष्णदास। आप कहाँ रहते हैं, बैकुंठपुर में या ब्रज में रहते हैं, गोकुल में रहते हैं। आपका पिता का नाम क्या है, अपना पिता का नाम भी कह दिया, मेरे पिता का नाम गोविंद महाराज है, गोविंद चतुर्वेदी या कुछ कह दिया। पीछे से उनका कोई सेवक हंसने लगा तो वो जो श्रोता था उसने कहा जी महाराज जी आप सब झूठ बोल रहे हैं। अच्छा ये झूठ हुआ कि सत्य है, जागतिक दृष्टि से असत्य है किंतु वही ठीक कह रहा है, इस सत्य की उपलब्धि कौन कर, वो कहा महाराज जी झूठ बोल रहे हैं और वो कह रहा है सत्य, परम सत्य है, सत्य से भी कोई ऊपर चीज। इसी तरह से जगत के लोग सत्य में ही असत्य देखते हैं और सत्य में असत्य में सत्य देखते हैं, वो बाध्य हैं क्योंकि आत्मज्ञान नहीं है। जो जितने ही निर्मल आत्मा के हैं अर्थात जितने ही दोषों से ऊपर रहते हैं उतने ही विशुद्ध तत्व को दर्शन में समर्थ हैं। सुखदेव गोस्वामी जी शुद्ध रूप में शुद्ध लीला का वर्णन कर रहे हैं किंतु उनकी भाषा में माया का मल तो है नहीं, किंतु जो परीक्षित महाराज जी सुन रहे हैं उनकी सभा में जो लोग हैं उनमें मल है, इसलिए कृष्ण की विशुद्ध लीला को समझ नहीं सके। उन लोगों ने कहा अरे ये कृष्ण गोपियों का साड़ी चुराता है, नंगा करके देखता है, ये उनके साथ में रास रचाता है, झूठ बोलता है, दुर्योधन को झूठ करके छल कपट से मरवाया, द्रोणाचार्य को छल कपट से मरवाया, भीष्म पितामह को कैसे मराया, छल प्रपंच करके मरवाया, किसी को सत्य रूप में नहीं मरवाया, नहीं तो वो लोग मरते ही नहीं। भीष्म को कैसे मरवाया, द्रोणाचार्य को अश्वत्थामा हत इति लगा दिया, अश्वत्थामा मर गया, अश्वत्थामा उस समय में जीवित था, वो मर ही नहीं सकता था, किंतु युधिष्ठिर से कहलवा करके आधी बात और शंख बजा करके जयद्रथ को कैसे मरवाया। इसलिए शिशुपाल इत्यादि ऐसा कर रहे हैं, कह रहे हैं उन तत्वों की आलोचना करने वाले व्यक्तियों के अधिकतर अधिकार के तारतम्य से तत्व मल युक्त मल रहित अनुभूत होते हैं, किंतु साधन करते 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 शुद्ध भक्तों के साथ में रहते 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 जब जितना ही मैल दूर होगा उतना ही शुद्ध रूप में भगवान के लीलाओं को कोई अनुभव करेगा, शुद्ध विचार को ग्रहण कर सकता है। जैसे एक जैसे देखो ब्राह्मण लोग प्राचीन काल से शूद्रों को नौकर बनाते हैं, क्यों? शास्त्रों के ज्ञान के बल पर, यही तो शूद्र भी क्यों नहीं ज्ञान प्राप्त कर लिया लाखों वर्षों में, क्यों नहीं किया?
आधार ही नहीं है,
है आधार, वो खाने पीने में और इधर उधर में। अभी उनको 10 बीघा जमीन दे दो, शराब पी करके बेच देंगे तो क्या करेगा? हमारे यहाँ एक जमादार जी हैं, उनको 1500 और उसकी स्त्री को 1200 रुपये मिलते हैं, तो ये कितना हुआ?
27,000
भी बढ़ गया। अच्छा वो बढ़ गया, मान ली 3,000-4,000 को, किंतु वो शराब पी करके एक पैसा नहीं बचता, वो महीने में ऋण करके पैसा के लिए तरसता है क्या? और यदि ये ब्राह्मण को ये रुपया मिलता है तो क्या करता है? अच्छी तरह से अपना परिवार का निर्वाह कर, बाल बच्चों को भी पढ़ा लेता, सब काम कर लेता। ये गलती किसकी है? किसकी गलती है? तो ये सब विचार नहीं करेंगे आजकल के लोग, दोष देंगे सब। कुछ दिनों के बाद में होगा क्या? गुण एकदम नहीं रहेगा और यही स्थूल बुद्धि आकर के गड़बड़ हो जाए। आज पेपर में एक चीज देखा, काशीराम कोई है ना?
काशीराम हरजन के नेता।
अच्छा, उन्होंने कहा जैसे हरजनों को जो बड़े बड़े पोस्ट दिए गए हैं उनको कम करो, ऊंची जाति वालों को दो, तो न्याय और ये होगा तो ये लोग बचेंगे, नहीं तो वही लोग नंगी औरतों को घुमाएंगे ये अफसर लोग, तो बुद्धि आएगी यदि आएगी, और नहीं तो ये दृष्टियां नहीं रहने से भक्ति की ऐसा होने के लिए बाध्य है। जो इसका अनुशीलन करेंगे वेद शास्त्रों का उनकी बुद्धि प्रखर और तेज होगी और वो शुद्ध चीज को अनुभव करेंगे, और बाकी जो अनुशीलन नहीं करेंगे उनकी ये दुर्गति है, इसमें कोई कर नहीं सकता। इसलिए कहते हैं इन तत्वों की आलोचना करते करते दिन रात, आप लोग तो कुछ सुन रहे हैं इन तत्वों के संबंध में, और लोग तो जो है भगवान का भजन करने भी इन तत्वों की उपलब्धि या सुनने को ही अवसर ही नहीं मिलता। ये सब भक्ति होती है, प्रेमा भक्ति होती है, उपाधि भक्ति होती है, कर्म संग सिद्धा होती है, स्वरूप सिद्धा होती है, आरोप सिद्धा भक्ति होती है, प्रेममयी भक्ति होती है, उससे भी बढ़कर के ब्रज की प्रेममयी भक्ति है, उससे भी बढ़कर के गोपियों की चरम भक्ति है। ये सब कहीं भी तुलनात्मक अध्ययन और विचार नहीं है। विचार से भौम गोकुल में जितनी प्रकार की लीलाएं प्रकटित हुई हैं वो समस्त लीलाएं माया गंध से रहित और विशुद्ध गोलोक में स्थित है, सब लीलाएं। इसलिए परकिया भाव किसी न किसी अचिंत शुद्ध भाव से गोलोक में अवश्य ही होगा, जरूर होगा। इसको जीव गोस्वामी भी स्वीकार करते हैं, जोग मायाकृत समस्त लीलाएं ही शुद्ध हैं, चाहे इस जगत में हो उस जगत में ही। परदार भाव परकिया भाव जोग मायाकृत है, महामायाकृत नहीं है। जोग माया जो कुछ करती हैं भगवान सत्य संकल्प हैं, वो जो कुछ सत्य संकल्प करते हैं वो जरूर सत्य होता है। ये जगत भी सत्य है क्योंकि भगवान की सत्य संकल्प बुद्धि से है, किंतु अनित्य है। इसलिए जीव गोस्वामी उसमें क्या देख रहे हैं, कौन से कुंज में कृष्ण स्थित कौन से लीला कर रहे हैं ये देख रहे हैं। तो एक हुआ हो गया ना, राधा जी के मान को देखा, वो ये सब विचार नहीं करते वो सब। इसीलिए जब तक वैसा भजन नहीं होगा तब तक एमए को देखने के लिए एमए क्लास का व्यक्ति होना चाहिए, समझेगा जहां एमए है, नहीं तो कैसे समझेगा। इसलिए जी गोस्वामी को एमए मान लीजिए, वैसा होने के बाद में उसको समझेंगे। एक छात्र मैट्रिक का छात्र एमए के प्रोफेसर को कैसे वो जज करेगा, यह संभव पर नहीं है, किसी चीज को यहां बदला। इसलिए वह तत्व शुद्ध तत्व मूलक है, जी गोस्वामी को शुद्ध तत्व मूलक उन्होंने दिखाया है, किंतु वह शुद्ध तत्व क्या है इस पर विचार करने की आवश्यकता है। श्रील रूप गोस्वामी ने ऐसा लिखा है, पतिश्च उपपतिश्चेति प्रभेदावी विश्वतौ तत्र पति स कन्नकाय जा प्राणी पाणी ग्राहको भव भवे रागोल्लंघयन धर्म परखिया बल बलार्थिना तदीय प्रेम सर्वस्वम बुद्धय रूप पति स्मृत लघुत्तम अत्र जत्प्रोक्तम तत्तु प्राकृत नायिके न कृष्णे रस निर्जा स्वादार्थम अवतारी। और भी उन्होंने ये सब लिखा है, उसका अर्थ द्वारका में कितना हो गया, 26 हो गया। जी गोस्वामी रूप गोस्वामी ने जो कहा है उसका विचार अब प्रस्तुत करेंगे और तब फिर अपनी ओर आए। कल हम लोग रूप गोस्वामी के विचारों को
पूरचंद्राय राधिकायै तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायन विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमां।
भगवान की दो लीलाएं हैं, प्रकट लीला प्रकट लीला। भगवान की दो प्रकार की लीला, प्रकट लीला और प्रकट लीला।